नमस्कार आदाब दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं आपके मोबाइल वाणी पर क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम लेकर, जहां आपको मिलेंगे आपके पढ़ाई लिखाई से जुड़े सारे अनसुलझे सवालों के जवाब, वो भी आपके चहेते शिक्षक के द्वारा। तो चलिए आज शुरू करते हैं सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के साथ।
जो मैं पप्पू राय व्याख्याता पूर्वोत्तर रेलवे महाविद्यालय सोनपुर आज आपसे समाजशास्त्र के 11वें एपिसोड की ओर मुखातिब हूँ, जिसमें आपको पश्चिमी समाजशास्त्री के बारे में पढ़ना है, कार्ल मार्क्स, ऑन क्लास कन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष के बारे में। मार्क्स के लिए व्यक्ति को सामाजिक समूहों में विभाजित करने का मुख्य तरीका धर्म, भाषा, राष्ट्रीयता अथवा समान पहचान के बजाय उत्पादन प्रक्रिया के संदर्भ में था। मार्क्स ने तर्क दिया कि सामाजिक उत्पादन प्रक्रिया में जो व्यक्ति एक जैसे पदों पर आसीन होते हैं, वे स्वतः ही एक वर्ग निर्मित करते हैं। वर्गों का निर्माण ऐतिहासिक प्रक्रिया के तहत होता है, जो उत्पादन में सहायक शक्तियों की स्थिति में परिवर्तन तथा पहले से विद्यमान वर्गों के मध्य होने वाले संघर्षों के फलस्वरूप होता है। जैसे उत्पादन के साधन, उत्पादन तकनीक तथा उत्पादन से सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है, तो विभिन्न वर्गों में संघर्ष बढ़ जाता है, जिसका परिणाम संघर्ष होता है। उत्पादन के पूंजीवादी साधन सर्वहारा वर्ग का निर्माण करते हैं, जो नवीन शहरी तथा संपत्ति विहीन वर्ग होता है, जिसका निर्माण सामंतवादी कृषक व्यवस्था के विनाश के फलस्वरूप होता है। उत्पादन प्रक्रिया में सामूहिक रूप से काम करने के कारण मजदूरों ने एक अलग वर्ग बनाया। मार्क्स वर्ग संघर्ष के प्रतिपादक थे। उनका यह मानना था कि वर्ग संघर्ष सामाजिक परिवर्तन लाने वाली मुख्य ताकत होती है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कार्य करने का एक कार्यक्रम भी था, में मार्क्स ने अपने विचार स्पष्टता संक्षेप में रखा है। इसमें यह बताते हैं कि प्रत्येक विद्यमान समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का है। वर्ग संघर्ष विभिन्न कालों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। आदिम युग से आधुनिक रूप में समाज का विकास भिन्न भिन्न चरणों में हुआ है, तथा प्रत्येक काल में शोषक एवं शोषित वर्ग एक दूसरे से अलग होते हैं। इनके अनुसार आजाद तथा दास, कुलीन तथा सामान्य जन, जमींदार एवं सर्फ, श्रेणी प्रमुख तथा कारीगर, या यूं कहें कि शोषक तथा शोषित एक दूसरे का हमेशा विरोध करते रहे हैं, कभी दबे रूप में तो कभी खुले रूप में संघर्ष। पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर, जैसे कि पूंजी, फैक्ट्री, मशीन, भूमि इत्यादि, बुर्जुआ वर्ग का अधिकार होता है, यानी पूंजीपति का अधिकार होता है। दूसरी तरफ श्रमिक वर्ग का उत्पादन के सभी साधनों पर अधिकार समाप्त हो गया। अतः पूंजीवादी सामाजिक व्यवस्था में मजदूरों के पास जीवित रहने के लिए सिवाय अपने श्रम को बेचने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं रह गया था, क्योंकि मजदूरों के पास कुछ बचा ही नहीं था। मार्क्सवादी सिद्धांत के तहत आर्थिक प्रक्रियाओं से विरोध का जन्म होता है, जो आगे चलकर वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। वर्ग संघर्ष राजनीतिक तथा सामाजिक स्थितियों पर भी निर्भर करता है। अब हम चलते हैं एमिल दोर्फिन की श्रम विभाजन पर। जब किसी कार्य को छोटे छोटे तर्कसंगत टुकड़ों में बांटकर हर भाग को करने के लिए अलग अलग लोग निर्धारित होते हैं या किए जाते हैं, इसे श्रम विभाजन कहा जाता है। हमें पढ़ना है एमिल दुर्खाइम का श्रम विभाजन। एमिल दुर्खाइम को समाज शास्त्र को औपचारिक संकाय का संस्थापक माना जा सकता है, क्योंकि ये 1913 में पेरिस में समाज शास्त्र के पहले प्रोफेसर थे। एमिल दुर्खाइम ने अपनी पहली पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में समाज के आदिम से आधुनिक तक के उद्विकास की प्रक्रिया के विश्लेषण की अपनी विधि से स्पष्ट किया हो। उन्होंने समाज का वर्गीकरण सामाजिक एकता की प्रकृति के आधार पर किया, जो इस समाज में विद्यमान थी। उन्होंने तर्क दिया कि जहां आदिम समाज का संगठन यांत्रिक एकता पर आधारित था, वहीं आधुनिक समाज का आधार सावयवी एकता पर आधारित था। यांत्रिक एकता का आधार व्यक्तिगत एकरूपता होती है, तथा यह कम जनसंख्या वाले समाज में पाई जाती है। यांत्रिक एकता पर आधारित समाज में दमनकारी कानून बनाए जाते हैं, ताकि सामाजिक मान्यताओं से विचलन को रोका जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्ति तथा समाज आपस में जुड़े हुए थे, और इसकी आशंका रहती थी कि आचरण की मान्यताओं के भंग होने से समाज बिखर सकता था। वहीं आधुनिक समाज की मुख्य विशेषता सावयवी एकता है, और यह सदस्यों की विषमताओं पर आधारित है। यह बृहत जनसंख्या वाले समाज में पाई जाती है, जहां अधिकतर सामाजिक संबंध अव्यक्तिक होते हैं। आधुनिक समाज के कानून दमनकारी न होकर क्षतिपूर्वक प्रवृत्ति के होते हैं। इसका मतलब यह है कि आधुनिक समाज में कानून का मुख्य उद्देश्य अपराधी कृत्यों में सुधार लाना या उसे ठीक करना है। आदिम समाज में कानून द्वारा गलत कार्य करने वाले को सजा दी जाती थी, जो एक प्रकार से उसके कृत्यों के लिए सामूहिक प्रतिशोध होता था। क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी बुनियादी जरूरतों जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा इत्यादि की पूर्ति के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसके लिए उसकी दूसरों के साथ
अंतःक्रिया बढ़ जाती है। द डिविजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी एमिल दुर्खिम के चिंतन के महत्व को दर्शाता है। अब हम चलते हैं मैक्स वेबर ऑन ब्यूरोक्रेसी, मैक्स वेबर का सिद्धांत नौकरशाही के बारे में। मैक्स वेबर जर्मनी में अपने समय के महत्वपूर्ण सामाजिक विचारक थे। सामाजिक तथा मानसिक तौर पर काफी लंबे समय तक बीमार रहने पर भी कई विषयों पर विस्तारपूर्वक लिखा है। नौकरशाही, मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही संगठन का वह साधन था जो घरेलू दुनिया को सार्वजनिक दुनिया से अलग करने पर आधारित था। इसका अर्थ यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र में व्यवहार स्पष्ट नियमों से संचालित होते थे। नौकरशाही कर्मचारियों की शक्तियों को कुछ उनकी जिम्मेदारियों की तुलना में प्रतिबंधित करती है तथा उन्हें संपूर्ण शक्ति प्रदान नहीं करती। नौकरशाही की सत्ता की विशेषताएं मैक्स वेबर के अनुसार इस प्रकार हैं। एक, अधिकारियों के प्रकार यानी कार्य। नौकरशाही के अंतर्गत कार्यालय क्षेत्राधिकार होते हैं जिनका संचालन नियम कानून तथा प्रशासनिक विधानों द्वारा होता है। चूंकि कर्तव्यों का निर्वहन नियमित रूप से किया जाना होता है, अतः केवल उन्हीं व्यक्तियों को नौकरी पर रखा जाता है जिनके पास उनसे संबंधित योग्यताएं होती हैं। दो, सोपानी क्रम। अधिकारी तथा कार्यालय श्रेणीगत सोपान पर आधारित होते हैं जहां उच्च अधिकारियों द्वारा निम्न अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है। तीन, लिखित दस्तावेजों की विश्वसनीयता। नौकरशाही व्यवस्थाओं का प्रबंधन लिखित दस्तावेजों के आधार पर चलाया जाता है तथा फाइलों को रिकॉर्ड के रूप में संभाल कर रखा जाता है। चार, कार्यालय प्रबंधन। चूंकि कार्यालय प्रबंधन विशिष्ट तथा आधुनिक क्रिया है, अतः यहाँ कार्य के लिए प्रशिक्षित तथा कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। पांचवा, कार्यालयी आचरण। कार्यालय में एक कर्मचारी का आचरण नियमों तथा कानूनों द्वारा नियंत्रित होता है। चूंकि ये नियम तथा विधान कानूनी रूप से पहचाने जाते हैं, अतः कर्मचारियों की इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कानूनी परिसीमितता को उनके कार्यों तथा सत्ता को अनियंत्रित शक्तियों को सीमित कर कर्मचारियों को अपने सेवार्थियों के प्रति जिम्मेदार बनाया, क्योंकि वह कार्य सार्वजनिक क्षेत्र में पूरा किया जाता था। धन्यवाद।
तो दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाएं नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।